نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. وكذلك اسی طرح اوحینا الیک قرآنا عربیا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی نازل کیا. یعنی قرآن عربی مطلب کیا؟ یعنی اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. اس کا مطلب ہے قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں، جو انگلش ہے اس کی لکھی ہوئی نیچے ٹرانسلیشن، وہ قرآن نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن ہی کہیں گے اس کو. جو اردو میں لکھی ہوئی اس کو ٹرانسلیشن کہیں گے، اس کو قرآن نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں کو. بستیوں کی ماں کو ڈرائیں، مطلب یہ نہیں ہے مطلب کہ بستی کو ڈرائیں. بستی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بستی میں رہنے والے ہیں. تو عرب اصل میں ہر چیز کی جو جڑ ہوتی ہے نا، بنیاد ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے. تو مکہ جو ہے وہ پھر القرآن ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مکہ سے نکلنے کو مجبور کیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانا تو نہیں چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو میرے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے بہتر اور ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے. اگر مجھے اس زمین سے نہ نکالا جاتا تو میں اپنی مرضی سے کبھی اس زمین کو نہ چھوڑتا. تو مکہ جو ہے یہ سب سے زیادہ معزز جگہ ہے، اور اس لیے بھی اس کو القرآن کہا گیا کہ ساری دنیا کے شہروں سے، بستیوں سے، ساری زمین سے زیادہ اللہ کے نزدیک یہ اشرف اور افضل جگہ ہے. اور یہ بھی ہے کہ ساری جو زمین ہے اس کا سینٹر پوائنٹ بھی یہی ہے نا. تو ان کو آپ ڈرائیں، ان کے رہنے والوں کو. تو کیا صرف ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے؟ نہیں، اگلی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ پوری دنیا کے لیے آئے. کیونکہ کئی یہ جو عیسائی اور یہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو صرف مکہ کے لیے ہوئی، اس سے آگے نہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے نہیں، القرآن و من حولہا، اور جو اس کے پاس ہیں، آس پاس ہیں. یعنی آس پاس کا آپ دائرہ لگاتے جائیں، لگاتے جائیں، لگاتے جائیں، تو پورا گلوب بن جاتا ہے. کیونکہ یہ سینٹر پوائنٹ ہے نا، تو پورا گلوب ہے اس کے آس پاس. تو پہلی سٹیج میں تو مکہ، اور اس کے بعد جتنے بھی ارد گرد کے بستیاں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری تھی. اور اس قرآن کا جو مقصد بھی ہے وہ کیا ہے؟ انذار کرنا. اچھا، انذار کا معنی ذرا ہم تھوڑا سا دوبارہ اور دیکھ لیں. پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ انذار کا مطلب صرف ڈرانے کی بات نہیں ہوتی. انذار کا مطلب ہوتا ہے وارن کر دینا کسی کو. مثال کے طور پہ ایک کوئی اندھا ہے، اچھا وہ اب بیچارے کو نظر نہیں آ رہا، وہ روڈ پہ چلا گیا، آگے سے ایک ٹرک آ گیا، آپ اس کو کہتے ہیں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے انذار، خطرے سے خبردار کر دینا. تو اس میں ڈرانے کی وہ والی بات نہیں جیسے ڈرانا آپ کو کسی خوفناک چیز سے ڈرایا جا رہا ہو، وہ والی بات نہیں ہے، بلکہ خطرے سے وارن کر دینا. تو اس قرآن کا مقصد ہی یہ فرمایا کہ ہم نے اس لیے اس کو وحی کیا ہے، اور عربی زبان میں اس لیے کیا کیونکہ اولین ان کے مخاطب ہی عربی تھے نا. جو پہلے مخاطب تھے انہی کو نہ سمجھ آتی اگر، تو پھر کس طرح سے وہ سیکھتے اس قرآن کو؟ تو قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے ہدایت لیں، ورنہ تو کسی بھی زبان میں نازل کر دیا جاتا، کوئی بھی اور زبان لے لی جاتی. اگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی تو کوئی بھی زبان یوز کی جا سکتی تھی، لیکن عربی زبان میں نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو مخاطبین تھے ان کی زبان یہی تھی اور وہ اس زبان میں اس قرآن کو سمجھیں تاکہ پھر وہ اس سے گائیڈنس لے سکیں۔ سمجھ آئی بات؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے، اگر ہدایت کے لیے نہ ہوتا پھر کوئی بھی کوئی زبان بھی ہو جاتی، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ لوگوں نے اس کو ہدایت کے لیے تھوڑی لینا تھا، پھر جو بھی زبان ہوتی اس کو سیکھ لیتے، اسی کو پڑھتے جاتے اور ثواب کماتے جاتے، لیکن سمجھنے کی وجہ سے، تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکے۔ اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے، اس کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے وارننگ دی جائے لوگوں کو۔ اس کا مطلب جب دعوت دینے لگیں گے نا، کسی کو کوئی بات بتانی ہوگی، کوئی دعوت دینی ہوگی، تو اس قرآن کے ذریعے دی جائے گی، اور مٹیریل نہیں یوز کریں، اس قرآن کی طرف آئیں، اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں۔ اور پھر انذاری کیوں کہا گیا؟ تبشیر بھی تو ہے، بشارت کی، آپ نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہیں، پر یہاں پہ انذار کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات اتری تھیں، مکی دور کا تقریباً مڈ کا پیریڈ تھا، اس وقت زیادہ ضرورت کس کی تھی؟ انذار کرنے کی تھی نا۔ آپ خود سوچیں معاشرے میں کیا ہو رہا تھا، اس میں کیا خوشخبریاں ان کو سناتے کہ تم بڑے جنتی ہو، تم بڑے یہ ہو، یہ سناتے ان کو؟ نہیں، جو ارد گرد ہو رہا تھا اس کے اندر وارننگ کی ضرورت تھی کہ باز آ جاؤ، مت کرو یہ۔ تو جب بھی ایسا معاشرہ ہوگا تو انذار ہی کرنا پڑے گا دوبارہ۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی نا؟ لوگ کہتے ہیں لوگ یہ ہمیں اس طرح کی باتیں نہ بتائیں اور ہمیں ایسے نہ کہیں، نہیں، اب جیسا معاشرہ ہوگا، جیسے حالات ہوں گے، اسی کے مطابق بات بتائی جائے گی نا۔ خوشخبریاں کس چیز پہ سنائی جائیں؟ کوئی ایسا عمل ہو تو بات بتائی جائے نا۔ تو سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قم فانذر، اٹھو اور اب انذار کرو، لوگوں کو خبردار کرو۔ لیکن چونکہ ہماری زبان محدود ہے نا، تو ہم اس کا کبھی ڈرنے کا معنی بھی لکھ دیتے، لیکن وہ اس کا ٹوٹلی معنی، یعنی کمپلیٹ معنی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر کہا کہ ام القرآن میں اور من حولہا، جو اس کے ارد گرد ہیں، کیا ساری جگہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا، یہ کام کر دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو صرف ام القرآن یا قریب قریب کی چھوٹی چھوٹی اور بستیوں میں یا کچھ اور جگہوں پہ، چیدہ چیدہ جگہوں پہ جو امپائرس تھیں وہاں تک خطوط گئے تھے۔ اس سے آگے پھر کس نے کام کیا؟ صحابہ کرام نے کیا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی ذمہ داری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن اس کے بعد امت کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کا کوئی کہیں دفن ہے، کوئی سیریا میں ہے، کوئی جارڈن میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے۔ کیوں اتنی اتنی دور دور جگہوں پہ جا کے وہ کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ؟ کوئی بزنس کرنے گئے تھے، یا کوئی ہائر ایجوکیشن کے لیے گئے تھے، یا کوئی کیریئر بنانے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ اس دین کے پیغام کو لے کے پھرے تھے وہ۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم یہ روضہ رسول پہ بیٹھ جائیں، یہاں پہ اپنی گدی نشینی میں سنبھال لیتا ہوں اور بس اس کے بعد بس یہیں پہ بیٹھے رہیں گے، ہم تو بس یہ ہمارا یہی کام ہوتا ہے نا۔ کوئی نیک شخص فوت ہو جائے اور وہ گدی سنبھال کے بیٹھ گئے، مزار بنا لیا، چلو اب مریدوں کو کیٹر کریں، روزی روٹی بھی یہیں سے چلتی رہے گی۔ یہ تو بڑا آسان تھا ان کے لیے، کیا ضرورت تھی ان کو گھر چھوڑنے کی، علاقے چھوڑنے کی، دور دور دنیا میں جانے کی، اس دین کو لے کے گھومیں۔ اسی وجہ سے یہ دین ہم تک بھی پہنچا، ان کی یہ قربانیاں نہ ہوتی تو یہ دین آگے نہ پھیلتا۔ کسی کو تو قربانی دینی پڑتی ہے نا، تبھی دین کا کام آگے چلتا ہے۔ اگر ہر کوئی یہ کہے کہ بس میں اپنا گھر دیکھوں، اپنا کاروبار دیکھوں، اپنے بچے دیکھوں، بس یہی میرا کام ہے، اس سے آگے نہیں میرا کوئی کام، تو مجھے بتائیں کہ دین کی دعوت کون دے گا، یہ کام کون کرے گا، اس کے لیے کوئی فرشتے اتریں گے؟ تو یہ کام انسانوں نے ہی کرنا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ کام امت کے ذمے کہ وہ اس کام کو کریں۔ وَتُنذِرَ، اور تم خبردار کرو۔ کس چیز سے خبردار کرو؟ یوم الجمع جمع ہونے کے دن سے لا ریب فیہ فیہ اس میں کوئی شک نہیں، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ایونٹ لے لیں، فیوچر ایونٹ لے لیں، کوئی شادی کسی کی ہونے والی ہے، کسی کا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، کسی کا کوئی اور جاب شروع ہونے والی ہے، کسی کو کوئی موونگ ہونے والی، کوئی بھی ایونٹ آپ لے لیں، کوئی پروگرام لے لیں، کوئی پارٹی لے لیں، کچھ بھی، اس میں شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے نا، پتہ نہیں ہو یا نہیں ہو، مگر قیامت ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ایک قرآن کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اور ایک قیامت کے بارے میں فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہ کرنا، پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، آج تک تو نہیں ہوئی. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، الفاظ تو بہت چھوٹے سے ہیں کہ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں، ایک جملے میں بات کہہ دی گئی مگر بات سوچیں تو اتنی گہری ہے کہ یہ آیت لے کر، یعنی میں آپ کو کے لیے یہ سبق جب تیار کر رہی تھی تو میری طبیعت پہ اتنی بوجھل رہی نا یہ آیت کہ میں، یعنی اس کے آگے پھر میں نہیں پڑھ سکی. دو ہی انجام ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا کوئی مقام نہیں ہے. ہم نے سورہ اعراف میں اعراف کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک جگہ ہوگی بیچ میں جہاں پہ کچھ لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا، مگر وہ ٹیمپریری جگہ ہے، اس کے بعد وہ بھی یا تو جنت میں یا جہنم میں جائیں گے، یعنی تھرڈ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ انسان کے لیے کوئی تیسری جگہ ہو، یا جنت میں یا جہنم میں. اب ہم ان دونوں جگہوں میں سے اپنے آپ کو کہیں ڈھونڈیں؟ لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم ہے، ان میں سے کوئی ہیں جنت میں جانے والے اور کوئی ہیں جہنم میں جانے والے، ان میں میں کہاں ہوں، کدھر نظر آ رہے ہیں؟ اپنا آپ کہیں نظر آتا ہے؟ اب ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. جنت میں تو وہی ہوگا نا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مرتے دم تک قائم رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جو مشرکین سے جنگ میں مصروف تھا. تو یہ مسلمانوں میں بہت صاحب مال تھا، بہت دولت والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ منظر، وہ کس سے جنگ کر رہا ہے؟ مشرکین سے، یعنی مسلمانوں کی سائیڈ کی طرف سے وہ جہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مال و دولت والا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جہنمی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے. اب صحابہ کرام کو بڑا تجسس ہوتا تھا، ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے، وہ آدمی برابر لڑتا رہا برابر لڑتا رہا، آخر زخمی ہو گیا. جب زخمی ہو گیا تو پھر اس نے چاہا کہ جلدی مر جائے، زخموں کی تاب نہ لا سکا، تکلیف نہ برداشت ہوئی، اپنی تلوار اپنے سینے کے بیچ میں رکھ کے اس پہ خود کو گرا دیا، اور تلوار اس کے شانوں کو چیرتی بھی آر پار ہو گئی. اس طرح وہ خودکشی کر کے مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ لوگوں کی نظروں میں اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ لوگوں کی نظروں میں جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے. اور اعمال کا اعتبار تو خاتمے پہ ہی موقوف ہے، یعنی جس حالت میں جان جائے گی نا اسی میں اٹھایا جائے گا. اعتبار ہے کہ کس حالت میں جان جائے. آج جس سٹیج پہ ہیں کوئی خبر نہیں کل کو ایمان کی حالت کیا رہتی ہے، اور مرتے وقت کس پہ موت آتی ہے کوئی معلوم نہیں. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया जन्नत तुम्हारे जूते के तस्मे से भी ज़्यादा तुमसे करीब है। और दूसरा भी हिस्सा सुन ले, और इसी तरह जहन्नुम भी शूलेस कितना करीब है हमसे, हाथ बढ़ाए तो हाथ में आ जाए। जन्नत तुम्हारे से इससे भी ज़्यादा करीब है और जहन्नुम भी शूलेस से भी ज़्यादा करीब है। यानी कोई छोटा सा काम भी तुम्हें जन्नत में ले जा सकता है और छोटी सी गलती भी जहन्नुम तक ले जा सकती है। दोनों चांसेस बराबर के हैं, इक्वल। इस हदीस से पता चल रहा है ना, ये नहीं फरमाया कि जन्नत तो तुम्हारे से करीब है और जहन्नुम बड़ी दूर है, जन्नत जूते के तस्मे से ज़्यादा करीब है और जहन्नुम चलो इतनी ही दूर होती जितना जूते का तस्मा था। नहीं, वो भी उतनी ही करीब है। क्या मतलब हुआ इसका, सोचा आपने? दोनों का चांस 50-50। कितने एट रिस्क है ना हम, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, फिर हम पता नहीं किन ख्वाबों में, पता नहीं किन खुश फहमियों में बैठे हुए हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं कि पता नहीं मेरा तो अगला कदम ही मैं रखूंगी जन्नत में ही पढ़ने वाला है। ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जहन्नुम में ही हो, कहाँ होगा ये तो पता ही नहीं, ये नहीं पता। ये तो 50-50 की बात तो छोड़ें, अगर 1% भी चांस है, अगर 1% भी चांस है तो क्या हाल होना चाहिए हमारा। एक फरीक जन्नत वाला और एक जहन्नुम वाला, ये ही है जिनसे आग जलाई जाएगी। बहुत से लोग दुनिया में आज हो सकता है कि बहुत मगन होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, वो जानते भी नहीं हैं कि उधर जहन्नुम उनको निगलने के लिए बेचैन है। बहुत से लोग हैं मस्ती में हैं, वो जानते भी नहीं हैं जहन्नुम की आग इनकी मुंतज़र है। बहुत से लोग हैं यार रातों को लंबी तान के बेखबर सो रहे हैं नरम बिस्तरों पे, और उनको पता ही नहीं है वो जहन्नुम का लुकमा बनने वाले। जहन्नुम इतनी करीब है जितना जूते का तस्मा। ये बात जिस्म में खौफ की लहर नहीं दौड़ा देती? इतनी करीब, मैं किन गफलतों में हूं, मैं क्या सोचे में हूं, मैंने क्या समझा हुआ कि शायद जन्नत मेरे लिए ही लिख दी गई और जन्नत का टिकट मेरी जेब में पड़ा हुआ। कोई भी नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक अंसार के एक बच्चा था उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आपको बुलाया गया। तो हज़रत आयशा फरमाती है, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, इस बच्चे के लिए तो खुशी है, ये तो जन्नत की चिड़ियों में से एक चिड़िया है, इसने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं, ना किसी बुराई को पाया। आपने फरमाया, आयशा इसके सिवा और कोई बात भी हो सकती है? बेशक अल्लाह ने जन्नत के लिए एक ग्रोह को पैदा किया, और जिस वक्त उनको जन्नत के लिए पैदा किया उस वक्त वो अपने आबा की पुश्तों में थे, और जहन्नुम के लिए भी एक ग्रोह को पैदा किया, और जिस वक्त उनको जहन्नुम के लिए पैदा किया उस वक्त वो अपने आबा की पुश्तों में थे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। उसी वक्त अल्लाह को पता था कि इनमें से जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, उस वक्त आपके हाथ में दो किताबें थी। आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो ये कैसी दो किताबें? हमने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह, सिवाय उस बात के जिसकी आप हमें खबर दें। आपके दाएं हाथ में जो किताब थी आपने इसके मुतल्लिक फरमाया, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से किताब है, इसमें अहले जन्नत के नाम हैं और उनके आबा के और उनके कबीलों के नाम हैं, फिर इनके आखिर में मीज़ान कर दिया गया, अब इनमें से कोई भी ना ज़्यादती होगी ना कोई कमी होगी। फिर इस किताब के मुतल्लिक फरमाया जो आपके लेफ़्ट हैंड में थी बाएं हाथ में, फरमाया ये रब्बुल आलमीन की तरफ से किताब है, इसमें जहन्नुम वालों के नाम है और इनके आबा के और इनके कबीलों तक के नाम है, और इसके आखिर में मीज़ान कर दिए गए, लाइन खींच दी गई है, अब इसमें ना कोई कमी होगी ना ज़्यादती। फिर आपके असहाब ने कहा, या रसूलल्लाह जब हर चीज़ को लिख के फरागत हो चुकी है तो फिर अमल किस बात का करें? आपने फरमाया, तुम सीधे काम करते रहो और भलाई के करीब रहो, क्योंकि जन्नती शख्स का खात्मा जन्नतियों वाले कामों पे होगा, हाँ उसने कैसे ही अमल किया, और दोजखी का खात्मा दोजखियों वाले काम पे ही होगा, कहा उसने कैसे ही अमल किया जिंदगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ झाड़ दिए, फिर फरमाया तुम्हारा रब फारिग हो चुका है, एक फरीक जन्नत में होगा और एक फरीक जहन्नम में। यानी अल्लाह ताला को अजल से इल्म है ये कौन से लोग हैं जो जन्नत वाले काम करेंगे और उसी पे मरेंगे, और कौन से लोग हैं जो जहन्नम वाले काम करेंगे और इसी पे मरेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम को पैदा किया था तो उनके दाएं कंधे पे हाथ मारा तो उसे चूंटियों की जिसामत में उनकी सफेद औलाद को निकाला, और उनके बाएं कंधे पे हाथ मारा तो उनसे उनकी स्याह औलाद को निकाला, गोया कि वो कोयलों की तरह थे। फिर दाएं तरफ वाली औलाद के मुतल्लिक फरमाया ये जन्नत की तरफ है, और बाएं कंधे वाली औलाद के मुतल्लिक फरमाया ये दोजख की तरफ है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी थे जिनका नाम अबू अब्दुल्ला था, वो बीमार थे तो उनके साथी उनकी आयादत के लिए गए, वो रोने लगे। उनके साथियों ने पूछा तुम किस वजह से रो रहे हो, क्या तुमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने ये नहीं फरमाया था तुम अपनी मूंछों को कम करो फिर इनको बरकरार रखो हत्ता के तुम्हारी मुझसे कयामत के दिन मुलाकात हो। उन्होंने फरमाया क्यों नहीं, ये फरमाया था लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक मुट्ठी बंद की फिर दूसरी मुट्ठी बंद की और फरमाया ये मुट्ठी जन्नतियों की है और ये मुट्ठी जहन्नमियों की है और मुझे कोई परवाह नहीं। अब मैं नहीं जानता कि मैं इन दो मुट्ठियों में से कौन सी मुट्ठी में हूँगा, या मैं या आप जानते, आपको पता है कौन सी मुट्ठी में आप थे? अभी जब रूहें ही बनी थी तो कौन सी मुट्ठी में थे हम, कोई भी नहीं जानता। फिर कैसे बेफिक्र रह सकते हैं, फिर कैसे आराम कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि जो ये हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं शायद यही बहुत काफी है, हालांकि एक इंसान का जाहिर होता है और एक बातिन होता है। यहाँ पे हम अपने बातिन को, बातिन में बुराइयाँ लिए हुए, बातिन में बड़ा कुछ गंद भरा हुआ, यहाँ पे रहते हुए हम जुबान से बड़े खूबसूरत अल्फाज बोल बोल के, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर कर के अपनी बड़ी अच्छी सूरत जाहिर करते हैं। कयामत का दिन जब आएगा ना, जाहिर और बातिन का फ़र्क मिट जाएगा। क़यामत का जो जलजला है वो सारे जो बाहर के पर्दे हैं उनको फाड़ देगा, हर इंसान के ऊपर का जो खौल है ना वो उतर जाएगा और असलियत बाहर आ जाएगी। आज जो ये जो हमने भेड़ की खाल अपने ऊपर डाली हुई है ना, भेड़ की खाल के अंदर भेड़िया बैठा है, तो ये खालें उतर जाएंगी, हकीकतों से पर्दा उठ जाएगा। कितने ही लोग हैं आज इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे हुए, उस दिन वो मुजरमों के कटहरों में खड़े होंगे। कितने ही लोग हैं आज बहुत बड़ी पर्सनालिटी समझे जाते हैं, उस दिन कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा हकीर दिखाई देंगे। कितने लोग हैं जिनके पास आज हर बात का जवाब है, हम ये कह देंगे हम वो कह देंगे, वो ऐसे लाजवाब होंगे कि उनके जैसे मुंह पे कोई जुबान ही नहीं है। आज तो बड़ा आसान है इंसानों को धोखा देना, इनके सामने अच्छे बन के बैठ जाना, बहुत मुमकिन है एक आदमी के लिए कि वो दीनदारी के स्टेज पे बैठा हो लेकिन अपने पड़ोसी को सताता हो। बहुत आसान है एक आदमी के लिए कि वो अपनी शान व शौकत दिखाने के लिए बहुत इस्लाम की बातें करे, ये करे और बहुत अपनी नेक नामियां दिखाने के लिए, लेकिन अंदरूने खाना गंद भरा हो, दिल में मैल कुचैल हो। बहुत आसान है यहाँ पे बड़ी बड़ी तकरीरें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन हम अपने अकेले में क्या है वो अल्लाह ही जानता है। इज्तमाई मकामात पे, मजलिसों में, दरसों में हम अल्लाह के नाम का झंडा उठाने वाले समझे जाते हैं, हमारी तन्हाइयां क्या अल्लाह की याद से मुअत्तर होती हैं या नहीं? हम मजलूमों की हिमायत का बड़ा जज्बा रखते हैं, बहुत बातें करते, लेकिन क्या हम अपनी निजी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में हम जालिम तो नहीं है? हर आदमी की हकीकत अल्लाह के इल्म में है। दुनिया में अल्लाह ने हमारी हकीकतों को छुपाया हुआ है, आखिरत में हर एक की हकीकत को खोल देगा। वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है जबकि अल्लाह की तराजू खड़ी होगी और हर आदमी को उसमें तोल के देखा जाएगा कौन क्या था और कौन क्या नहीं था। और ला रोइबा फी, इसने तो आना ही आना है, ये तो होना ही होना है, कोई इसको टाल नहीं सकता, ना कोई अपने आप को बचा सकता है। कामयाब सिर्फ वो है जो आज अपने आप को अल्लाह की तराजू में खड़ा कर ले, क्योंकि जो आदमी कल अल्लाह की तराजू में खड़ा किया जाएगा उसके लिए सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं। तो आज जिन अमाल को हम बड़ा बड़ा समझते हैं, शायद लोग भी बड़ा बना के दिखा देते हैं कि आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कोई पता नहीं इनकी अल्लाह के यहाँ क्या वैल्यू है। एक आर्टिस्ट था, उसने तस्वीरें बनाई, तो उसने अपनी तस्वीरों की नीलामी की ना, उसने सोचा कि मेरी तस्वीरें पता नहीं कितने लाखों पौंड में बिकेंगी। तो वो जब उसने नीलामी की तो उसकी चार तस्वीरें वहां पे रखी गई और उसकी तस्वीरों की कीमत सिर्फ 1 पाउंड लगी। इंग्लैंड का कोई पेंटर था, अल्लाह अकबर, उसने सोचा था, वो बड़ा नाराज हुआ, उसने सोचा था कि इन तस्वीरों की कीमत इससे बहुत ज्यादा है। ये दुनिया का मामला है मगर इसी में आखिरत के मामले की तस्वीर है। बहुत से लोग हैं जिनके पास सिर्फ आज 1 पाउंड का अमल है, 1 डॉलर का अमल है, मगर वो उसको 1,000 डॉलर का अमल दिखा के कैश कराना चाहते हैं। दीन का एक छोटा सा काम करते हैं, छोटा सा पार्टली जुज एक, उसको कुल समझ लेते हैं। कोई अपनी जाहरी शोहरत के लिए काम कर रहा है, सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए काम कर रहा है, उसको कह रहा है कि मैं दीन का बहुत काम कर रही हूं। कोई दौलत और शोहरत की खातिर बड़े 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 स्लोगन्स रेज करता है, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े दिखावे की चीजें करता है। अल्लाह अकबर, लेकिन उसके पीछे अपनी जाति जाति शोहरत, अपना नाम, अपनी बड़ाई, इसको ऊंचा करना मकसूद होता है। कोई छोटा सा इसलाह का काम करता है, छोटा सा इसलाह का काम, और उसको दावत और तबलीग का शानदार नाम देता है कि मैं तो दावा कर रही हूं, मैं तो तबलीग करती हूं। अल्लाहु अकबर। कोई अपने सियासत का शौक रखता है तो सियासी जौक की तस्कीन के लिए कुछ कर रहा है और कहते हैं हम तो इस्लामी निजाम नाफिज करने के लिए कर रहे हैं। हर एक आदमी मौजूदा दुनिया में अगर देखे ना तो अपनी पूरी पूरी कीमत वसूल कर रहा है, वो अपने मामूली से काम को बहुत बड़ा काम साबित करके खुश हो रहा है। लेकिन मौत आएगी ना, सारी खुशफहमियाँ दूर हो जाएंगी, सारे धोखे खत्म हो जाएंगे। चाहे आज अपने 1 डॉलर के अमल को आप यह 1,000 डॉलर का अमल साबित करा दे, अल्लाह के हाँ वो तुलेगा अपनी असल कदरों कीमत के लिहाज से। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या सोचे बैठे हुए हैं, क्या क्या जहन के अंदर बातें हैं, हमारा ये अमल और हमारा वो और हम ऐसे और हम वैसे, बहुत बड़े बड़े नारे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। सारी बातों की हकीकत वहां खुलेगी, फिर सेफ कौन है यहाँ पे? कौन है सेफ? हम में से कोई सेफ है? किसी के पास ये अल्लाह की तरफ से कोई राइटिंग लिखी भी है कि तुम सेफ हो, बस तुम जन्नत वालों में से हो? वो तो पैगंबर थे, या जो जो इनको कह दिया गया रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, उसके अलावा जितने भी लोग हैं सब खतरे में, सब खतरे में। कोई सेफ नहीं अपने आप को समझ सकता। हजरत हसन बसरी एक दफा रोने लगे, किसी ने कहा आपको किस चीज ने रुला दी? फरमाया मुझे डर है कल को मैं जहन्नुम में फेंक दिया जाऊं और मुझे दुनिया में इसकी परवाह ही ना हो, मुझे पता ही ना हो। जैसे मैं आपको कह रही हूँ, कई लोग दुनिया में खुशबाज घूम रहे हैं, आज मजे कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, दुनिया में मगन है। को पता ही नहीं है कि उनका तो जहन्नुम में जाने का फैसला हो चुका है। उसके बाद कौन निकलेगा वहां से, कौन नहीं निकलेगा, वो तो बाद की बातें हैं। जो एक लम्हे के लिए भी वहां चला गया, सोचे उसकी क्या हालत है। इसीलिए हजरत हसन बसरी फरमाते थे कि लोग सोचते हैं कि जो मोमिन है, पता नहीं ये कोई बीमार है या ये कोई मरीज है, क्या इनको मसला है कि ये इस तरह है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। यही लोग हैं कि कयामत के दिन कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हुज़्न, कि अल्लाह ने हमसे गम को दूर कर दिया। क्योंकि दुनिया में इतने गमगीन रहते थे, उनको वो चीज़ें गमगीन नहीं करती थी जो लोगों को किया करती। उनको रुलाने और गमगीन करने वाला तो जहन्नम का खौफ था, इतना डरते थे वो जहन्नम से। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हारिस फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन हंजला से एक रोज़ ये बात सुनी, जब वो बीमार थे तो मैं उनकी बीमार पुरसी के लिए गया, एक आदमी ने उनके पास ये आयत पढ़ दी, लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकहिम गवाश, कि उनके ऊपर भी जहन्नम का ही ओढ़ना होगा और जहन्नम का बिछोना होगा। तो इब्ने हंजला जो थे ये आयत सुन के रो पड़े, हत्ता कि मैंने गुमान किया कि मुझे तो लग रहा है अब ये फौत ही हो जाएंगे। फरमाया ये जहन्नमी आग के पाटों में होंगे। फिर अपने पाँव पर खड़े हुए तो किसी ने कहा ए अबू अब्दुर्रहमान बैठ जाइए। फरमाया मुझे जहन्नम के जिक्र ने बैठने से रोक दिया, मुझे नहीं पता, शायद मैं ही उनमें हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ जो जहन्नम में जाने वाले। इनको कितनी फिक्रें थी, इनको कितनी फिक्र थी, कितनी परेशानी थी। हमारी फिक्रें कहाँ हैं कि हजरत उस्मान जैसे भी कहते हैं, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि अगर मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान में हूँ, मुझे ये ना पता हो कि इनमें से किसकी तरफ मुझे जाने का हुक्म दिया जाएगा, तो मैं पसंद करूंगा कि मुझे राख बना दिया जाए इससे पहले कि मुझे इल्म हो कि मैं कहाँ जाऊंगा। यानी रिजल्ट सुनने से पहले मैं राख हो जाऊं, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं होगा अगर जहन्नम का फैसला हो गया। तो हम फिर कहाँ खड़े में? हजरत फुजैल बिन अय्याज जो थे, एक दफा ना वो मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे, तो उनके साथ उनके बेटे खड़े हुए थे अली बिन फुजैल। जब हजरत फुजैल ने अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ी तो वहां तक पहुंचे लतरवुन्नल जहीम, वो जरूर देखेंगे जहन्नुम को, जरूर देखेंगे, तुम जरूर देखोगे जहन्नुम को। तो जो उनके बेटे थे वो बेहोश होकर गिर पड़े। हजरत फुजैल को ये हिम्मत ना हुई कि इससे आगे पढ़ सके, और आधी रात तक जाके फिर उनको अफाका हुआ। मगरिब से लेके आधी रात तक वो बेहोश पड़े रहे। तो यही घर के सहन में इनको किसी ने देखा कि खड़े में, कह रहे हैं जहन्नुम जहन्नुम, जहन्नुम से खुलासी कैसे होगी, कब होगी उससे खुलासी? कितना डरते थे ये, इनके खौफ कैसे थे। और आपको पता है कि इनका इंतकाल कैसे हुआ? एक दफा इन्होंने ये आयत सुनी ना सूरह अनआम की, वलौ तरा इद वुकिफू अलन नारी फ़कालू या लैतना नुर्रतु वला नुकज़्ज़िब, कि अगर आप उनको देखें जबकि ये जहन्नुम के किनारे पे खड़े होंगे, गरीब होकर के जहन्नुम में डाल दिए जाएं, तो कहेंगे हाय क्या अच्छी बात होती कि हम वापस लौटा दिए जाएं। फिर हम कभी अपने रब की आयात को कभी झूठा नहीं बताएंगे, हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। ये आयत इन्होंने सुनी थी कि इनका इंतकाल हुआ था, ये सुन के इतने खौफ थे उनको। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ खाने वाले थे तो और कोई कैसे रह सकता है इससे? बुखारी और मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सूरज ग्रहण हुआ तो मैंने जहन्नुम को देखा और मैंने आज के रोज की तरह कभी भी इससे ज्यादा खौफनाक मंजर नहीं देखा।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जहन्नुम लोगों के सामने कर दी जाए ना तो जो भी उसको देखे वो मर जाएगा, देख के ही मर जाएगा। और वसीयत करके गए हम, एक खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को वसीयत की है कि दो चीज़ें हैं जन्नत और जहन्नम, इनको भूलना ना कभी। फिर आप रो पड़े और आंसू जारी और गए और आपकी दाढ़ी मुबारक के दोनों तरफ आंसुओं से भीग गई आपकी दाढ़ी। फिर फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम्हें आखिरत के बारे में इतना इल्म हो जितना मुझे पता है तो तुम खौफ के मारे कब्रों में चले जाओ और अपने सरों पर मट्टी डालो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमारे कैसे जहन्नुम से खौफ है? हम कहते हैं हमें बड़ा खौफ आता है। वो खौफ हमें कभी गुनाहों से तो रोकता नहीं है, वो कभी हमें नेकियों में तो दौड़ाता नहीं है। तो वो कौन सा खौफ है जिसका हम शोर मचाए हुए हैं कि हाय बड़ा डर लगता है? और मुंह से कहते हैं, अक्सर हम कहते हैं हाय हम तो बड़े गुनाहगार हैं। अगर गुनाहगार हैं तो फिर तो डर के मारे इंसान को और तेज दौड़ लगानी चाहिए। वो कहते हैं हम बड़े गुनाहगार हैं और आराम से बैठे हैं, यानी मानते हैं। ये नहीं कि कोई भी नहीं कहता कि हम गुनाहगार नहीं है, मानते हैं, फिर भी कोई खौफ ही नहीं। कोई नजर आता है जिंदगी में खौफ? कि वो भी क्या लोग थे कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब एक आदमी को देखा तो उसकी रंगत उड़ी हुई थी, पूछा ये क्या बात है तुम्हें? कहने लगा मैं बीमार हूं। उन्होंने कहा, दोबारा यही पूछा, नहीं तुम्हें कुछ और बात है? उसने कहा नहीं नहीं मैं बीमार हूं। फिर पूछा, फिर कहा नहीं मैं बीमार हूं। फिर उन्होंने इसको छोड़ा ही नहीं तो कहने लगा कि अब आप मुझे बताने पे मजबूर कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने दुनिया का फल चखा तो इसकी रौनक और लज्जत मेरी आंखों में हकीर हो गई, इसके पत्थर और सोना बराबर हो गए इस दुनिया के, और ये देखता हूँ कि जैसे लोग जन्नत की तरफ भेजे जा रहे हैं। यानी उनकी इमेजिनेशन देखे, कहते हैं मैं ये देखता हूँ कि लोग जन्नत की तरफ भेजे जा रहे हैं और मैं जहन्नुम की तरफ, इस वजह से मैं रात को जागता हूँ और मैं दिन को रोज़ा रखता हूँ, लेकिन मेरे ये काम अल्लाह के माफ करने, सवाब देने और आजाब देने के मुकाबले में बहुत छोटे और हकीर हैं, बहुत छोटे। वो भी करके भी कांपते थे, हमें ना करके भी मुतमईन है कि वो लोग इमेजिन किया करते थे। जैसे एक अब सुलेमान का वाक्य आता है कि वो कहते थे अक्सर मेरे सामने ये शक्ल बन जाती है, मेरा सर जहन्नुम के दो पहाड़ों के दरमियान है, कभी मुझे ये नज़र आता है कि मैं जहन्नुम में लटकाया हुआ हूँ हत्ता कि इसकी गहराई तक जा पहुँचाऊँ। तो वो ये सोच करते थे कि अगर ऐसा हो गया मुझे कौन बचाएगा, कौन वहाँ पे मेरी मदद करेगा। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, ये अनाउंस हो गया कि ये जहन्नुम में जाएगा, फिर कौन बचाएगा? आप में से कोई मुझे बचा सकता है? आप मुझसे जितनी भी मोहब्बत करते हो, आप में से कोई मुझे बचा सकता है? कौन किसके लिए खड़ा होगा? कौन कहेगा कि मुझे डाल दो, इसको छोड़ दो? अव्वल तो कोई कहेगा ही नहीं, अगर कोई कह भी देता, अव्वल तो है ही नहीं ऐसा, कोई कह भी देता तो क्या उसकी मानी जाएगी? तो फिर अपना अपना इंतजाम करना कितना जरूरी है ना, एक करो जन्नत में और एक जानना, अपने आप को इसमें तलाश करें। खुद ही देख लें, खुद ही फैसला करें कि मैं किस ग्रोह में हूं, मैं कहाँ जाने वाली हूं, मुझे अपना आप किस में नजर आता है। पर आयत बहुत ज्यादा बोझल, बहुत ज्यादा तबीयत के ऊपर, यानी अगर मेरा बस चले तो मैं बस यहीं पे खत्म कर दूं। हमारा क्या मकाम है अल्लाह की नजर में हम नहीं जानते, हम किस में लिखे गए हैं वो हम नहीं जानते। भाई ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह अगर जहन्नमियों की फिरिस्त में मैं हूँ, मेरा नाम अगर उस लिस्ट में, तो अल्लाह तू कादिर है, तू निकाल के जन्नतियों में डाल। हम में से हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन किस ग्रोह में है, किस फरीक में है? पता है कोई कह सकता है? ना बताने वाली को पता है और ना सुनने वालों को, किसी को भी नहीं पता। हम सबका अंजाम डिफरेंट है ना, सब एक जैसे थोड़ी है, क्योंकि सबके अमल एक जैसे नहीं है। कौन कितने पानी में ये तो अल्लाह को पता, कौन कहाँ होगा ये भी उसको ही मालूम है। और हम डर ही सकते हैं और अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ करके अपनी जन्नत में दाखिल फरमा देना। बेशक इस काबिल तो नहीं है ना हमारे अमल इस काबिल, पर अल्लाह तेरी रहमत तो बहुत ज्यादा है ना, तेरी मगफरत तो बहुत ज्यादा। अगर तेरी रहमत ना हो तो फिर हम जाए कहाँ, हम तो एक दिन भी जमीन पे नहीं चल सकते। और अगर अल्लाह तेरी रहमत ना हो तो अल्लाह हम तो गम से ही शायद मर जाए। तू अपनी रहमत की वजह से हमें माफ कर देना और हमें जन्नत में दाखिल फरमा देना। मैं तो कहती हूँ शर्म आती है अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस ना होती कि अपने लिए जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो तो हम कभी ना कर सकते। शर्म आती, किस मुंह से करें जन्नतुल फिरदौस मांगे। हजरत उमर ने तो फरमाया था मेरा एक कदम जन्नत में हो और एक बाहर हो तब भी मुझे डर होगा कि पता नहीं मैं जन्नत में जा सकता हूँ कि नहीं। एक कदम अभी अंदर है, एक बाहर है, और हमारा तो एक भी नहीं है। हमें तो पता ही नहीं, हमें किसने आके बताया? कोई पैगंबर है जो आके बताएंगे कि भाई तुम सेफ हो गई हो, अब तुम फिक्र ना करो, बस तुम जन्नती हो। अल्लाह क्या बने उस इंसान का कि वहां पे पता नहीं हमारे क्या फैसले हुए पड़े और हम यहाँ पे खुशियों के शादियां ने बजा रहे हो। अल्लाह ने सबके फैसलों को इसीलिए सीक्रेट रखा, वरना इंसान तो यहाँ पे जी ही ना सकता, वो तो जीते जी ही मर जाता अगर उसको ये पता चल जाता कि जहन्नमियों की लिस्ट में मेरा नाम है, वो रह सकता था? जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती, खत्म हो जाता वो तो। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह अकबर।
सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक।